शिष्यों के दुर्व्यवहार का मूक अवलोकन कर देवानंद ने मत हाथी अपराध किया, अर्थात भगवान चैतन्य के एक शुद्ध भक्त की निंदा का अपराध। कालांतर में श्री गौर राय के एक अंतरंग भक्त बकेश्वर पंडित की कृपा द्वारा देवानंद श्री कृष्ण चैतन्य की दिव्यता को समझे और उनके शरणापन्न हो गए। भगवान ने उनका अपराध क्षमा कर दिया तथा उन्हें भक्ति का वरदान दिया। कृष्ण लीला में भागुरी मुनि के रूप में सेवारत है। श्री देवानंद पंडित भावतिथि महामहोत्सव की कंथा श्रीमद भागवतम सप्तम स्कंध पांचवा अध्याय। अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यप का साधु पुत्र पहला। श्लोक संख्या 23 और 24। श्री पहला उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं आत्मनिवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णु अनुवाद तात्पर्य वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें श्री प्रहलाद महाराज जी कृपा से ये श्लोक आज हमें उच्चारण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और श्रीला प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसमें नवदा भक्ति का वर्णन है और केवल 15 पेज का तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे तात्पर्य है वो मेरी डिवोशनल एक्सटेसी है। तो 15 पेज का तात्पर्य तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसी में पूरा समय निकल जाएगा। केवल पहले 4 पेज पढ़ेंगे जिसमें नवदा भक्ति में जो पहला अंग है श्रवण, तो आज केवल उस पर चर्चा करेंगे। तो उस तक पहुँचते पहुँचते भी प्रभुपा जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य है, 4 पेज उसमें लगेंगे। उसके बाद जितना समय मिला उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो अब 4 पेज का तात्पर्य है तो आप सबके लिए एक चुनौती है कि अपने एकाग्रता बनाए रखें और ध्यानपूर्वक सुने। बीच बीच में आपसे हम प्रश्न पूछते रहेंगे और आपको जागृत रखने का प्रयास करेंगे। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साध समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन नौ विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति कौन है? जो नवदा भक्ति के द्वारा डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहा है। तात्पर्य, जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरु को, गुरु से जो कुछ सीखा है वह सर्वोत्तम उपदेश है। जबकि उसने शरण तथा अमृत नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो कुछ सीखा था वह व्यर्थ है। भक्ति परेशान भाव विरक्ति अनक्त भागवत 11:2-42 यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में रुचि रखता है भौतिक बातों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चना कहलाती है। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक हैं, सुहृद सर्वभूतानां, भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, यह सख्यम कहलाता है। पुंसार पिता विष्णु, पुंसार शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसे कि भगवद्गीता 9:32 में पुष्टि की गई है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस् तेऽपि यान्ति परार्थतिम्। यद्यपि स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्ति बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम करने लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवती अर्था मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। एक त्रिदंडी संन्यासी 3 दंड धारण करता है जो काय मनोवाक्य शरीर मन तथा वाणी के सूचक है। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या अधिकाधिक आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर मन तथा वचनों से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर तथा मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा में लगाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई समझाई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा कि भक्ति अर्थात डायरेक्टली हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है। कोई कर्मकांडी व्यक्ति भी होता है तो हर एक कर्मकांडी यज्ञ में वो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं और हर एक यज्ञ में नारायण का नाम लिया जाता है, उनको आमंत्रित दी जाती है। तो कर्मकांडी कार्य करके उसके फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, ये डायरेक्ट भक्ति नहीं है। डायरेक्ट भक्ति क्या है कि अपने मन वाणी और शरीर को भगवान को समर्पित कर देना और फिर मन वाणी शरीर द्वारा सारे के सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये है सीधा कृष्ण विष्णु की भक्ति करना। ठीक है, ये तक बताया गया है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप गुण पार्षद और लीलाओं का वर्णन को कानों से सुनने के लिए आते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत भगवद्गीता तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्रों में बताया गया है। इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए। कीर्तनम, स्मरणम का अर्थ है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करना और पाद सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना। अर्चनम का अर्थ है भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसा कि मंदिरों में की जाती है। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण का चिर दास नित्य कृष्ण दास मानना दास्यम है और कृष्ण का हित चिंतन सख्यम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उनकी शरण में जाएं क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वह उनके दर्शन का प्रचार करे और हरेक से कृष्ण की शरण में जाने के लिए अनुरोध करें। आत्मनिवेदनम का अर्थ है कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना जिसमें शरीर मन बुद्धि तथा पास में जो भी हो वह सम्मिलित है। भगवान से हम मित्रता कैसे निभा सकते हैं? प्रचार करना, उनके इस फिलॉसफी, उनके सिद्धांत का प्रचार करना, जिसे सियाल से अलग उनकी शरण। भक्ति के नौ विधियों को निष्ठा पूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहते हैं। अधा का अर्थ है सीधे प्रत्यक्षता। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य कर्म करने के बाद कृष्ण को उनके फल अर्पित करते हैं, यह तो कर्मकांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु पूर्णतया समर्पित होकर पुण्य कर्म करने चाहिए, ठीक है ना? पुण्य कर्मों का फल भगवान को समर्पित नहीं करना बल्कि समर्पित होकर पुण्य कर्म करने हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, ना कि अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ है अधा शब्द का। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्थम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तथा अनुकूल होकर कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति करे। ज्ञान या कर्म से अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। गोपाल दापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल भगवान की भक्ति, अन्य किसी की नहीं। अक्सर हम बोलते हैं हम तो दुर्गा जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त हैं। तो भक्ति का मतलब है प्रेमय सेवा, वो केवल कृष्ण की ही है। भगवद्गीता के छठे अध्याय में अंतिम श्लोक में बताते हैं एक भक्ति अलग होती है, पूजा अलग होती है। पूजा किसी भी सामान्य व्यक्ति की हो सकती है लेकिन भक्ति प्रेमय सेवा जीव केवल कृष्ण की ही कर सकता है। इसलिए यहाँ शब्द अतुदा आया है, डायरेक्टली प्रत्यक्षता कृष्ण की सेवा। उपनिषद के अनुसार भक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा है। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात बुद्धि से तथा स्वर्ग लोक जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। अगर भक्ति करना है तो इंद्र तृप्ति की इच्छा से हमें मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्द में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कार्य भक्ति कहलाता है। भक्ति को निष्कर्म अर्थात सकाम कर्म के फलों से सकाम कर्म के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म समान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन नौ विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था, हो सकता है भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई भक्त अविचल भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता है तो उसमें अन्य विधियां मिली होती हैं। जैसे भी हम बोल रहे हैं तो साथ साथ श्रवण भी कर रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन साथ साथ चल रहा है। स्मरण तभी होगा जब श्रवण होगा। अर्चना भी करते हैं तो साथ में कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो इस नौ विधियां आपस में एक दूसरे से अभिन्न भी है और आपस में मिक्सडअप है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। किसी एक का भी हम पालन कर लेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के लिए अनुचित नहीं है जब भक्त नौ विधियों नौ लक्षणों में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है, अन्य आठ उसमें निहित रहते हैं। अब हम इन नौ विधियों का विवेचना करेंगे। पहला श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि नौ विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है, निस्संदेह यह अनिवार्य है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के गुणों को समझ सकता है तथा दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार भगवान के नाम दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद, उनके संबंध प्रति वस्तु की अनुभूति करने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता जाता है। अतएव कम अगर विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम रूप गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है तो श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी जा रही है। श्रीमद् भागवतम पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है और श्रीमद् भागवतम का श्रवण दिव्य रसों से ओतप्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्ति रुचि के अनुसार सुनना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे या भगवान राम या नरसिंह देव के नाम का कीर्तन करे। रामादि मूर्ति शुकला निर्वेण अतिष्ठ, भगवान के असंख्य नाम तथा रूप है। अतः भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम रूप आदि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उससे कीर्तन करना चाहिए और अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। इसका अर्थ यह है कि किसी को राम भगवान में रुचि हो सकती है, किसी को नरसिंह भगवान में, तो जैसे जिसकी रुचि है उसको उसी प्रकार के वक्ता से सुनना चाहिए। लेकिन कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं तो कृष्ण के नाम रूप गुणलीला सुनने से हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए और वह उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम नरसिंह तथा अन्य भगवान रूपों द्वारा आकृष्ट होते हैं। चूंकि कृष्ण भगवान के परम रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम रूप तथा गुणों का विशेष रूप से दर्शन किया है। भगवान के नाम रूप तथा गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति के अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतः चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे, परम विचरते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता। अतः भगवान के नाम रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। श्रीमद् भागवतम 1.5.11 एक श्लोक है, तद्वाक् मिश्र को जनता विरभ यस्मिन् पति श्लोक बधेवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोम कीर्तानि यत् श्रवन्ति गायन्ति कृणन्ति साधव। अनंत देव के नाम रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त पापों को दूर करने में समर्थ है। अतः यदि ऐसे श्लोक ठीक से ना भी रची गए हो तो भी वह भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रमाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्त से भगवान के नाम रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाता है। यदि ऐसा अवसर ना प्राप्त हो तो वह अकेले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण आत्मबात विद्वा आत्मपातना ब्राह्मण तो कुप्पा वरन कतो यच्छी माश्र कि आप ये जो असत चीजों से आप असत हैं इससे ज्यादा आप हमेशा चिंतित रहेंगे और ये घर जो है अंत कुएं के समान है, ये आत्मा का हनन करने वाला है, इसको पिताजी आप छोड़िए और वृंदावन में जाकर हरे कृष्ण में जी। जब छोटे बालक के मुख से ऐसा सुना तो हिरण्यकश्यप को हंसी आ गई। छोटा सा 5 साल का बच्चा अपने पिताजी को बोले पिताजी आप अंदर में जाकर संन्यास लीजिए, क्यों चिंता कर रहे हैं। तो हर कोई हंसेगा कैसी बातें कर रहे हैं। उठा के शरण को बोला ऐसे कुछ सिखाओ, ये तो जैसे कुछ सुन लिया होगा, इसको जरा समझाओ। शरण ने खूब समझाया साम दाम दंड भेद करके और दोबारा उसको तैयार करके लाए। दोबारा पूछा बच्चे जो बेस्ट आपने सीखा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट छोड़ा साफ सब चीज़ों का, उन्होंने सोचा अब तो बता देगा बाबा लक्ष्मी ऐसा कुछ सुनाएगा बड़ी खुशी देगा, बहुत प्रेम से उसका सिर सुनगा, उसको सहलाया, बता बच्चे क्या सुना। तो प्रहलाद महाराज उसी मूड में चल रहे थे, बोले हमने जो गुरु से सीखा सुनाओ। पहले बोला था कि वृंदावन जाके हरि की शरण लो, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले प्रयोजन बताया अब अभिनय बता रहे हैं कैसे शरण लेंगे, नवदा भक्ति का पालन कर पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं परफेक्ट। अब बता रहे शरणम कीर्तनम विष्णु, अब विष्णु बोलते हैं एकदम परफेक्टली। तो अब तो मैंने अच्छे से सहा नहीं गया और आगे बोलते हैं उठा कर फेंकते हैं जोर से। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि नवदा भक्ति में से किसी एक अंग का भी पालन करेंगे वो हमारे लिए पर्याप्त है, और करना है सब विष्णु का अर्थात डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली नहीं। कर्मकांड करके फलों को अर्पण नहीं करना, अपने आप को समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ये अद्वैत का अर्थ है। तो श्रवणम के बहुत महत्व है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नवदा भक्ति में से जो कारण है क्रम अनुसार सबसे पहले श्रवणम है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवण ठीक से हो गया तो बाकी सारी विधियों को हम सही ढंग से पालन कर सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, अगर श्रवणम ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया। अगर समझ लीजिए केमिकल की फैक्ट्री है और एक नया नया इंजीनियर वहाँ पे आता है और उसको बताया जाए ये केमिकल मिक्स करना है और ये प्रोडक्ट आ जाएगा प्लास्टिक बन जाएगा, सही ढंग से उसने सुन लिया समझ लिया तो सही प्रोडक्ट आ जाएगा, ये उल्टा सीधा कर दिया तो फैक्ट्री में आग लग सकती है। इसी ढंग से अगर हमने सही ढंग से श्रवण नहीं किया तो हमारी भक्ति में आग लग सकती है, डेविएशंस हो सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कोई सीखता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को सीख कर उसने सही ढंग से टाइपिंग कर दिया तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। हम बैठे बैठे एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं अगर सही ढंग से कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली। इसे अगर सही ढंग से श्रवण कर लिया बड़ी से बड़ी समस्या जरा मृत्यु जरा व्याधि का समाधान हो सकता है और भगवान से हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर सही ढंग से लैंग्वेज नहीं सीखी तो टाइप करने का क्या आएगा, सिंटेक्स एरर, कहीं गड़बड़ है। इसलिए अगर हमने सही ढंग से श्रवण नहीं किया तो भक्ति के नियमों का पालन भी करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा, इतने सुखा का सुखा रहेगा और परेशान हो जाएंगे, एरर, कहीं एरर है, कहीं गलती है हमारे श्रवण में। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। श्रवण एक एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है कि कुछ वाणी की तरंगे कानों के ईयर ट्रांसमिट पड़े तो श्रवण हो गया, नहीं। केवल क्लास में बैठने से भी हो सकता है हम श्रवण ना करें, श्रवण बहुत इंटरनल प्रोसेस है। तो आज ये चर्चा करेंगे कि श्रवण का क्या महत्व है, श्रवण कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, श्रवण में क्या क्या दिक्कतें आते हैं, कैसे इन दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं, समय सीमित है। ये सारी की सारी चीजें कैसे करेंगे पता नहीं, आप सबकी कृपा चाहिए, राधा अधिकरण की कृपा चाहिए। तो पूरे भागवतम के प्रत्येक स्कंद में हम देखते हैं श्रवण की बहुत महिमा गाई गई। अगर हम श्रवण ध्यान पूर्वक करेंगे, अटेंटिव हियरिंग करेंगे, तो भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं साध्यो हृदय अवरुद्यते अत्र कृतभिः शुश्रुतौ श्रवणात्। अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और इसकी आदत का अनुशीलन करेंगे साध्यो तुरंत ही हमारे हृदय में भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे विदाउट डिले तत्क्षणात्, उसी क्षण। श्रवण करने से हमें यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष भक्तिर उत्पाद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। केवल भगवान के इन वैदिक साहित्य का श्रवण करने मात्र से ही कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और शोक मोह और भय सब जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। भागवतम दसवें स्कंद में सातवें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में परीक्षित महाराज बताते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से हमारे सारे के सारे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाते हैं, भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण भक्तों में मित्रता उत्पन्न होती है। श्रवण के बहुत महिमा हर स्कंद में बताई गई है। अब दिक्कत यह है कि ये श्रवण कहां हमें दिक्कत आती है कि हमें ये सारे परिणाम नहीं मिलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवदा भक्ति में से भक्ति का पहला भाग श्रवण बताया गया है और भक्ति का अर्थ है प्रेमय सेवा, यानी कि श्रवणम एक सेवा है। हम में से कितने भक्त लोग जब यहाँ पर श्रवण करने आते हैं हम इस मानसिकता के साथ आते हैं कि सेवा करने जा रहा हूं। जो वक्ता आता है वो बेचारा कांपरा होता है कि मैंने सेवा करनी है, सही समय से संदेश दोहरा सकूं, वो अज्ञान है वो प्रार्थनाएं कर रहा होता है, उस सेवा करने के मामले भी आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन श्रोता आराम से बैठा हुआ देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलो भैया, अच्छा लगा वो सुन लेंगे, एंटरटेनिंग हो सुन लेंगे, ना हो सो जाएंगे, क्या दिक्कत है मेरे को, आई हैव नथिंग टू लूज, जैसा एक घंटा टाइम लगे कोई बात नहीं। तो श्रोता गण ज्यादातर सेवा के भाव से नहीं आते, ऐसा नहीं आते कि मैं सुनूंगा और आज मैं कृष्ण के प्रति मैं प्रेम उत्पन्न करने का तरीका जानूंगा, कृष्ण के समीप जाऊंगा, कृष्ण को प्रसन्न करूंगा। श्रवदा स्वर्था कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन सता, अपने सबसे प्रिय मित्र कृष्ण जो कि मेरे हृदय में, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं सुनूंगा। हम श्रवण अक्सर करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बड़ा अच्छा है जी, बहुत बढ़िया क्लास है, हंसा हंसा के पागल कर रहे हैं, क्या जोक मार रहे थे, या कितने प्रभु जी कितने मन के पढ़ लिख के आया, कितना तैयारी करके आया, क्या श्लोक ना, या तो एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट, या फिर हम किसी ढंग से वक्ता से कितनी सूचना कितनी इंफॉर्मेशन स्क्वीज आउट कर रहे हैं, और बता और बता, केवल इंफॉर्मेशन, ये भी अच्छा पॉइंट, नया पॉइंट, ये हृदय से हृदय का है, शरणागत होना पड़ेगा इस प्रोसेस में। भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भक्ति की विधि में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, इसकी शरण लेनी पड़ेगी। जिस ढंग से वक्ता प्रार्थना कर रहा है उसी ढंग से श्रोता को भी खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जैसे कि अभी जो संदेश मैं सुनने जा रहा हूं उसको मैं ध्यान पूर्वक सुन सकूं, इसको अपने हृदय में उतार सकूं, इसका अपने जीवन में अनुशीलन कर सकूं। बिना श्रवण के डिजास्टर, आप सोचिए तो सही, अगर भक्ति की एक साइंस को, एक साधारण मटेरियल साइंस को नहीं समझ पाते तो डिजास्टर हो जाता है, नौकरी से बाहर निकल दिया जाएगा, है ना। यहाँ भगवान से प्रेम करने जा रहे हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और सही ढंग से सुनाई नहीं, एक साधारण रिक्शा वाले से पूछते हैं भैया इस ब्लॉक में जाना है कहाँ जाना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते बता, राइट लेफ्ट या फिर सुनते, और यहाँ भी बोल रहे हैं भगवान से प्रेम करना है, भगवत धाम जाना है, आराम से उठाने के लिए उसको सर्कस करनी पड़ती है वक्ता को, ना कोई चुटकुला सुनाना पड़ता है, कोई ये करना पड़ता है, जागो जागो और फिर वो भेजने को सुनाता है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरनल ये प्रोसेस है। सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, ओरल रिसेप्शन, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को ओरल रिसेप्शन देना है, स्वागत करना है उनके कानों के द्वारा। जब किसी को स्वागत कर रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं, तो एकदम सोते हुए नहीं कर सकते, अहंकार में नहीं कर सकते, झुक कर करना होगा, शरणागत होकर करना होगा, ओरल रिसेप्शन, तभी यह संदेश अंदर प्रवेश करेगा, शरणागत होकर सुनना पड़ेगा। सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, कानों के द्वारा भोक्ता की इच्छा से नहीं सेवक की इच्छा से, ये कान सेवक है, भगवत संदेश स्वामी है, अभी बिल्कुल उल्टा है, ये कान मेरे स्वामी है, भगवत संदेश सेवक है, कानों को अच्छा लगेगा तो सुनूंगा नहीं तो नहीं सुनूंगा। सभी अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्य इंद्रिया सिमल मुखो ही जीवा दो स्वयं सुरती अदा, सेवा उन्मुख होकर सुनना पड़ेगा। भोग उन्मुख हम जब करते हैं तो चैंटिंग और हियरिंग दोनों के दोनों त्रुटिपूर्ण हो जाती है। तो श्रवण की विधि को बताया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी ने कि श्रवण करते हुए सबसे पहले तो अपने जो कल्पनाएं हैं, अपने जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, थिंकिंग है, उसको लॉक कर दो अलग से थोड़ी देर के लिए। भूल जाओ मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा जनरल मैनेजर हूँ, प्रोफेसर हूँ, भूल जाओ इसको। बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आना चाहिए। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित हूँ, मुझे नहीं मालूम इसका क्या समाधान है, मैं समाधान ढूंढने आया हूँ, कृपया करके बताइए, इस आचरण के साथ में आना चाहिए। जब इन सारी कल्पनाओं को मानसिकताओं को अलग से दूर रखेंगे और जब श्रवण करेंगे फिर हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं वो दूर होंगे। फिर तीसरा हमारे हृदय को शक्ति मिलेगी। भागवतम में बताया गया 11 स्कंद में कि जब श्रवण करते हैं भगवान के संदेश को इतने शक्तिशाली है जैसे एक बीमार व्यक्ति को इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन जाते हैं वो पूरी दवाई अंदर जाके उसके रोग को दूर करती है और उसको शक्ति प्रदान करती है। इसी ढंग से भगवान के संदेश इतने शक्तिशाली है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, यहाँ पे बताया कि सब तरह के पापों को नष्ट कर देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम चैंटिंग करें वही ध्यान रखें कान सेवा के लिए है, ओरल रिसेप्शन, भगवान को कानों के द्वारा हृदय में रिसीव करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक इंट्राविनस इंजेक्शन जा रहा है और सारे के सारे जो अंदर का कलमश है उसको साफ कर देगा और हमें शक्ति देगा। और जब हृदय में शक्ति आएगी तो शरणागत करने की इच्छा उत्पन्न होगी। जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है वो विकसित होगा। एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति शरणागत नहीं कर सकता, वो डरता रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरे इंद्र तृप्ति का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, इल्यूजन में वो मोह में रहता है। जब हृदय को शक्ति प्राप्त होगी, स्ट्रांग हार्ट होगा, फिर वो शरणागत करने की इच्छा विकसित होगी। और जब पूर्ण से शरणागत होगा तो फिर परम सत्य हृदय में प्रकट होगा, भगवान भगवान का रूप गुण लीला सब प्रकट हो गए। तो ये शरणागत है। इसको हम अपने भौतिक जगत में भी देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने ट्रांजिस्टर पे रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री सुनी है, रनिंग कमेंट्री? आजकल तो लोगों को इस सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उसका एक अलग ही लुत्फ था, एक अलग ही आनंद है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मैच होता था सुबह 2:30 बजे लोग उठकर रजाई के अंदर सुनते थे। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्षमा करें। तो मैं सोच रहा था कि वैसा श्रवण होगा तो पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड हिंदी में प्रकट हो जाता था। उसको बोलते थे आंखों देखा हाल। आप बैठे हैं यहाँ दिल्ली में डजाई के अंदर और पूरा मेलबर्न में पहुंच जाते थे। और कमेंटर शुरू में उठ के बताता है कि यहाँ पर चार स्लिप है, ये वो है, ये वो है, बॉलर दूर से भागते हुए आ रहा है, पूरा उसका रूप प्रकट हो जाता था। और बैट्समैन ने ये किया ये किया फिर शो मचता था, क्या हुआ, आउट हुआ, छक्का लगा, फिर ध्यान से सुनते थे। और वैसे रोमांच उत्पन्न होता था शरीर में, याद है ना वो एक्सपीरियंस। और कहीं भी अब सड़कों पे जाओ सबके सब खड़े हैं, लोग चाय के दुकान में, पान के दुकान में, सब सुन रहे हैं, ध्यान से क्या हो रहा है। तो वैसी ईगरनेस चाहिए सुनने के लिए भगवान के संदेश को, वैसी ईगरनेस चाहिए। एक भौतिक शब्द ध्वनि में इतनी शक्ति है कि जब हम उसके शरणागत होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि आंखों देखा हाल, भगवान सामने प्रकट हो सकते हैं अगर हम इसी ईगरनेस के साथ सुनेंगे, इतनी उत्कंठा के साथ सुनेंगे, इतनी रुचि के साथ सुनेंगे। उत्कंठा के साथ सुना और जो कमेंटेटर बोल रहा है उस पर पूरा विश्वास, फुल फेथ। वो बोल रहे चार स्लिप हैं तो चार स्लिप हैं, उस पर फिर ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़े होगा, दो होंगे या तीन होंगे, ऐसे थोड़े। वो आउट हो गया तो आउट हो गया, नहीं 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 कैसे आउट हो सकते, नहीं इतना अच्छा खेलता कैसे आउट, नहीं हो गया तो हो गया, जो उसने बोला पूरा विश्वास, कोई आना खाने नहीं, कोई अटकले नहीं, जैसा वो कह रहे हैं मान के हाँ जी ऐसे ही है। और उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं और पूरा का पूरा हम देखते हैं सारा का सारा सीन हमारे सामने प्रकट हो सकता है। इसी ढंग से जब हम इसी उत्कंठा के साथ सुनेंगे, अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है हमारे अंदर, कहाँ से ये ईगरनेस आएगी, कैसे हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो बताया गया जब हम यहाँ प्रतिदिन भागवतम सुनते भी हैं, हमें लगता है हम सुन रहे हैं लेकिन हमें भगवत संदेश सुनाई नहीं देता, क्योंकि आचार्यगण बताते हैं कि हमारी चेतना के अंदर जो इंद्र तृप्ति का शोर है वो बहुत तेजी से मच रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन की जो इच्छाएं हैं चिंताएं हैं वो इतने ज्यादा हमारी चेतना को उन्होंने ग्रसित किया हुआ है कि हमें भगवत संदेश भगवान का नाम सुनाई नहीं देता, इसलिए कोई उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती। उत्कंठा उत्पन्न करने के लिए हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैंने इस भौतिक जगत में नहीं रहना, मैं दुखी हो चुका हूं इस भौतिक जगत से, ये भौतिक जगत मेरे किसी भी लायक नहीं है। तब होगा क्या बताइए तरीका कि इसे भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलना है, तब उत्कंठा होगी। जब तक हम इस संसार में संतुष्ट हैं या संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं हम हृदय से भगवत संदेश नहीं सुन सकते, भगवत नाम नहीं सुन सकते। जिस व्यक्ति के प्लान्स है यहां पर खुश रहने का सुखी रहने का और वहां पर भगवान की सेवा क्यों मांगेगा, वो तो भगवान को अपनी सेवा में लगाता है, सुख संपत्ति आवे घर मिटे कष्ट मिटे धन का, वो तो भगवान को अपनी सेवा में लगाता है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की सेवा करना तो हो गई नहीं कोई रुचि, दोनों कंट्राडिक्टरी है, कैसे होगा। तो हमको बार 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 सुनकर इस अपने जीवन के उद्देश्य को शुद्ध करना होगा। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं इस जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे दूषित जीवन के लक्ष्य के कारण है, पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ के कारण। पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ दूषित जीवन का लक्ष्य है भोग करना, भौतिक इच्छाएं, प्रभुत्व जमाना, और ये सारी के सारी शुद्ध हो सकती है अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, जो लोग कर्ण रूपी पात्रों में भगवान के अत्यंत प्रिय जो लोग कर्ण रूपी पात्रों में भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को भर भर कर पीते हैं वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापिस जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है 2237। बताया गया जो दूषित जीवन का लक्ष्य है वो शुद्ध हो सकता है अगर कर्णों में भगवान के कथा अमृत को हम पान करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं सफिशियंट एंड प्रॉपर हियरिंग, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा में और के गुणत्व में, सफिशियंट एंड प्रॉपर हियरिंग से हम अपने जीवन के लक्ष्य को शुद्ध कर सकते हैं। प्रॉपर हियरिंग की हमने चर्चा की कि हमें इसको सेवा के रूप में लेना चाहिए, भोग की इच्छा से हमें हियरिंग नहीं करना, कोई इंफॉर्मेशन के लिए हियरिंग नहीं करना, है ना। कई बार हम देखते हैं कौन वक्ता है कैसा वक्ता है, जैसे इस पिक्चर का हीरो कौन है, ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसकी पिक्चर देखना जरूर जाएंगे। कोई भी हम देखते हैं आपको रियलाइजेशन होगा कोई भी व्यक्ति व्यासासन पे बैठ के अगर वो गंभीरता से उसने तैयारी की है प्रार्थना करके वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं हमें उसके बहुत से साक्षात्कार सुनने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ वक्ता लोग इतने करिश्मेटिक ना हो, इतना अच्छे ढंग से प्रस्तुत ना कर पाते हो, लेकिन अगर वो गंभीरता से भगवान के संदेश को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें बहुत ही गंभीरता से सुनने का प्रयास करना चाहिए। होता क्या कि वो वक्ता अगर मोनोटोन के बोल रहे हैं तो शोर चुपचाप सो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या बोला क्या हुआ, किसी ने क्लास भेज गए, है ना। लेकिन हर वक्ता को जो कि व्यास आसन में और एक प्रमाणित गुरु का वो प्रतिनिधि है और वो गंभीरता से संदेश को दोहरा रहा है तो हमें उसको पूरे आदर और सम्मान के साथ सुनना चाहिए प्रॉपरली। इस ओरिजिनल सचिन स्वामी महाराज कहते हैं कि हियरिंग दो प्रकार से होती है, श्रवण एक हृदय से और एक बुद्धि से। जब हम बुद्धि से सुनेंगे तो भगवान ने दावनल का पान कर लिया, पूरे जंगल की अग्नि को पी गए, बड़ी अच्छी कथा है, अच्छा लगा। जब हृदय से सुनेंगे तो ये लगेगा अरे मैं भी संसार दावनल में हूँ, मैं भी तो अपनी में चल रहा हूँ इस संसार में जंगल में, तो क्यों नहीं मेरे भगवान मेरे इस दावनल का पान करेंगे। वो हृदय से सुनना होगा, और जब हृदय से सुनते हैं तो सुनने से क्या होगा, हमारा वक्ता के साथ एक संबंध स्थापित होता है, हम वक्ता के हृदय की भावनाओं को जान सकते हैं और हमें भी शक्ति प्राप्त होती है और फिर हम अच्छे ढंग से उसका कीर्तन कर सकते हैं। बुद्धि के स्तर से सुनेंगे तो दूसरों की बुद्धि को ही प्रभावित करेंगे, हृदय से सुनेंगे तो दूसरे के हृदय को प्रभावित करेंगे। और ये जितना भी हमारा श्रवण है ये बहुत ही सफिशियंटली सही क्वालिटी में भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, भागवत में चौथे स्कंध में बताया गया है कि बद जीव को भूख और प्यास इतनी सताती रहती है, उसके पास समय ही नहीं है कि श्रवण के लिए रुचि उत्पन्न करे। और कई बार बद जीव आ भी जाता है, साधना भक्ति करता है तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो इतनी सेवाएं ले रहता है, इतनी सेवाएं ले रहता है कि श्रवण को भूल जाता है। धर्म सुखिता कौन सा विश्व कथा सो ना उत्पाद यदि श्रम एवं ही केवलम। हमें जितनी भी सेवाएं मिली है उनके पीछे मुख्य लक्ष्य है भगवान के संदेश के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत धाम जाने की पहली योग्यता ये है, ईगरनेस टू हियर। भगवत धाम जाने की पहली योग्यता है कि भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्कंठा। जिसके पास हम जाने जाते हैं उसका नाम सुनकर हमें नींद आ जाएगी तो कैसे हम जाने के योग्य बनेंगे। भगवत धाम जाने की पहली योग्यता यह नहीं है कि बड़ी बड़ी सेवाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। भगवत धाम जाने की पहली योग्यता यह है कि श्रवण कीर्तन में रुचि। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम करते हैं उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के नाम के जप करने में, भगवान की कथा सुनने में हमारी रुचि उत्पन्न हो। श्री प्रभुपाद जब एक बार न्यू वृंदावन में गए तो भक्तों ने उनको घेर लिया, बोले प्रभुपाद बट वी प्लीज यू, आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और उससे अधिकांशतः बुक डिस्ट्रीब्यूटर से सब यही कह रहे हैं, प्रभुपाद ने नहीं बोला, बुक डिस्ट्रीब्यूटर से यही बोले प्रभुपाद बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स, प्रभुपाद ने बोला बाय लर्निंग टू लव कृष्णा। कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे तब हम प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद लॉस एंजलिस में आए, फिर भक्तों ने ये प्रश्न पूछा प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू, प्रभुपाद ने बोला बाय चैंटिंग 16 राउंड्स विदाउट इंटरप्शन। यानी कि हम ऐसी सेवाएं करें जिससे कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें। आजकल पुस्तक मैराथन चल रहा है, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सही चेतना में पुस्तक वितरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या अगले दिन सुबह जब हम चैंटिंग करने बैठे हैं उसमें हमें मालूम चल जाएगा क्या मेरा चैंटिंग में टेस्ट बढ़ रहा है, क्या मुझे सुनने में आनंद आ रहा है, चाहे थोड़ी देर भागवत कथा सुन रहा हूँ उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब मैं सही ढंग से सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान के संदेश के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भागवतम के पहले अध्याय स्तंभ के दूसरे अध्याय के 16 श्लोक जो कि प्रसिद्ध श्लोक है, वह सुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवाय विप्रह पुण्य तीर्थ निशीवना। कि अगर हमें भगवान की कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है तो हमें उन भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी जो कि हर तरह की त्रुटियों से मुक्त है। जब उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर भगवत कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होगी। भगवान के सेवकों की सेवा करके उनके गुण हमारे में आ जाते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं उसी के गुण हमारे में आ जाते हैं। एक वो उस्ताद की जब सेवा करता है, कौन होता है उसका असिस्टेंट, क्या बोलता है, छोटे शागिर्द होता है, चेला होता है, छोटे बोलते हैं उसको, वो अपने उस्ताद की सेवा करता है तो वो भी उस्ताद बन जाता है, उसी तरह से वो मोटर मैकेनिक बन जाएगा, जो उसके अंदर गुण है उसके चेहरे में आ जाएंगे। इसी ढंग से भगवान के सेवक की हम सेवा करेंगे तो उनके अंदर जो गुण है भगवान की कथा के प्रति रुचि वो हमारे में उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी की बहुत रुचि थी। प्रभुपाद जब दीक्षा लेने गए, अलाहाबाद में दीक्षा ले रहे थे, तो भक्त सिद्धांत ने क्या बोला, आई नो हिम, ही लिसंस वेरी केयरफुली, मैं उनको जानता हूँ, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो उनके अंदर प्रभुपाद के अंदर एक गुण था, जब हम प्रभुपाद की सेवा करेंगे, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो प्रभुपाद का एक गुण हमारे में आएगा, हम भी ध्यानपूर्वक जप करेंगे और हमारी भी भगवत कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। तो इस जन्म से हम अपने जीवन में रुचि ना होने का मुख्य कारण क्या था, पहला था इंद्रदीप्ति, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं की तुलना चौथे स्कंध में जंग से की गई है, जैसे कि नदी के तट पे कुशाग घास हो, और सारे के सारे नदी के पानी को सोख लेती है। इसी ढंग से भौतिक इच्छाएं हमारे श्रवण कीर्तन को पूरा पूरा सोख लेती है। हमारा जो श्रवण कीर्तन बहुत त्रुटिपन हो जाता है अगर हम भौतिक इच्छाओं के साथ हरि नाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, यह हमारे ऊपर है कि हम भौतिक इच्छाओं को कब दें छोड़ें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसको जल्दी से जल्दी त्यागो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल समझन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं प्रैक्टिस अवॉइडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल द सेंसेस। प्रैक्टिस अवॉइडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसकी प्रैक्टिस करो कि सेंस इंद्र तृप्ति को अवॉइड करें। आंखों की इच्छा है सुंदर रूप देखने की, अवॉइड करें। जीवा की इच्छा है सुंदर व्यंजन खाने की, अवॉइड करें। कानों की इच्छा है अपनी प्रशंसा सुनने की, अवॉइड करें। तो इससे जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन अवॉइड करने की प्रैक्टिस करेंगे हम सेंसेस को कंट्रोल करना सीखेंगे। जब तक हमारे सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे इंद्रियां इंद्र तृप्ति मांगेगी, मन एजिटेट रहेगा। जब एजिटेटेड मन के साथ हम श्रवण नहीं कर पाएंगे, उसकी जो शो है इतना तेज होगा कि भगवत संदेश हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो श्रवण के प्रति हम सही ढंग से श्रवण या सही मात्रा में श्रवण नहीं कर पाते, भौतिक इच्छाएं। दूसरा एक बद जीव है, भूख और प्यास से इतना पीड़ित रहता है। तीसरा कोई साधक है वो सही संतुलन नहीं लगा पाता अपनी सेवाओं में और साधना में। और चौथा हमारा बहुत ही इरेगुलेटेड लाइफ शेड्यूल रहता है, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, उससे माइंड एजिटेट रहता है और हम सही ढंग से श्रवण नहीं कर पाते। और जो प्रचारक है वो श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न कब कैसे कर सकते हैं, जब वो प्रचार करने जाए अपने आप को बहुत ही नगण्य सेवक माने कि हम तो केवल प्रभुपाद के संदेश को दोहरा सके और प्रभुपाद से खूब प्रार्थना करें कि मैं आपके संदेश को दोहरा सकूं, तब हमारे श्रवण में खुशी उत्पन्न होगी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। और कई बार हम बताया गया है अगर हम लगातार सुनेंगे तो लगातार सुनने से हमारे में दृढ़ता आती है, लगातार सुनने से हम उसका स्मरण कर पाएंगे, लगातार सुनने से हम देहात बुद्धि से ऊपर उठेंगे और हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कॉन्स्टेंटली। जैसे हम देखते हैं लगातार एडवर्टाइजमेंट्स होती है, एक ही चीज को बार 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 हमें सुनाया जाता है। बचपन में देखते थे एडवर्टाइजमेंट थी इसी बल्ब लड़ा इसी बल्ब लड़ा, व्यक्ति था वो घर में घुसा तो उसकी वाइफ बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, लिफ्ट में जाना कोई बोल रहा है इसी बल्ब में जाना इसी बल्ब में जाना, कहीं गया तो इसी बल्ब लड़ा, उसको याद नहीं इसी बल्ब है। तो उसी ढंग से जब हम बार 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 सुनेंगे कि ध्यान को जब करना चाहिए करना चाहिए, तो जब बार बार सुनेंगे उसका रिमेम्बरेंस होगा, उसका रिमेम्बरेंस होगा और उस प्रोसेस में हमारा फेथ हो जाएगा। बार बार पोस्टर होते हैं इंडिया बेस्ट स्मॉल कार, इंडिया बेस्ट स्मॉल कार, इंडिया बेस्ट स्मॉल कार की सबसे सबसे छोटी कारों की कैटेगरी में सबसे उत्तम कार, सबसे उत्तम कार। तो उसका क्या होगा, उसकी लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। और हियरिंग का मतलब है फॉलोइंग। जब तक ये प्रोसेस हियरिंग एक क्रिया नहीं है, एक घंटा हमने सुन लिया भगवत कक्षा में हियरिंग हो गई, हियरिंग का अर्थ है हियरिंग के बाद उसमें कंटेम्प्लेट करना ये ध्यासन और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारना। जब तक हम जीवन में नहीं उतार रहे हैं इसका मतलब अभी तक हम समझे नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव होम द पॉइंट, बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है ताकि बात समझ में आ जाए। भगवान भी जब अर्जुन को बता रहे हैं, पहले आप देखते हैं दूसरे अध्याय में आत्मा के गुणों के बताते हैं तो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, अवित्य हो चिंत्य हो अधाय हो फिर बोलते नैनम चिंती शस्त्राणी, अलग तरीके से जाते हैं ना, इसको शस्त्र काट सकते हो अग्नि चला सकते हो, बोलते जल नहीं सकती गीली नहीं हो सकती, एक ही बात को बार बार वो दोहरा रहे हैं ताकि समझ जाए आत्मा क्या है। तो बार बार सुनने से हमारे उसमें दृढ़ता आती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है और हम उस बात को समझ सकते हैं। श्रवण में एक सबसे बड़ी जो बाधा है वो है ओवर फैमिलियरिटी विद द स्पीकर। ओवर फैमिलियरिटी क्या बोलेंगे, अपने वक्ता के साथ बहुत ही ज्यादा जान पहचान हो जाना। जैसे हम देखते हैं अर्जुन और कृष्ण के साथ, पहले अध्याय में अर्जुन मान ही नहीं रहा था कृष्ण को मेरे गुरु हैं, कुछ सुनने की खुद ही सुना रहे थे। जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया फिर उन्होंने सुनना शुरू किया। तो कई बार हम वक्ता को बहुत ज्यादा जानते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये ऐसे ही है ऐसे ही है, बोलता कुछ है करता कुछ है ऐसे ही है। हो सकता है वो बोलता कुछ हो करता कुछ हो, उसके संदेश में हो सकता है इतनी शक्ति ना हो, लेकिन एज ए श्रोता, श्रोता को तो ये देखना चाहिए कि मुझे क्या इसमें क्या संदेश क्या है मेरे लिए। ये व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या संदेश है। उनके जीवन में जो दोष है उससे मुझे इतनी चिंता नहीं करनी। निश्चित रूप से अगर जो वक्ता अकिंचन होंगे शुद्ध होंगे तो उनका संदेश बहुत शक्तिशाली होगा, तुरंत हृदय में प्रवेश करेगा। लेकिन वक्ता को अपने आप को पहले शुद्ध करना चाहिए। बोनाफाइड स्पीकर के साथ बोनाफाइड हीरर भी होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए। एक हैवी वेट बॉक्सर के साथ फेदर वेट बॉक्सर का मैच नहीं कराते तो वो मैच ही नहीं, कोई कहां एक हैवी वेट और कहां फेदर वेट आ गए तो खत्म। हैवी वेट बॉक्सर हो दो हैवी वेट बॉक्सर हो, बोनाफाइड वक्ता बोनाफाइड श्रोता, फिर देखिए क्या संदेश निकल के आता है। और अगर श्रोता बड़े उत्साहित होते हैं तो वक्ता का भी उत्साह बढ़ता है और परमात्मा उसके धैर्य बैठे हुए और उसको प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर श्रोता बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है और श्रोता सो रहे हैं तो वक्ता ही बोलता है कहां टाइम खत्म होगा, मेरे को भी नींद आ रही है तो वो संदेश निकलेगा नहीं। तो ये केमिस्ट्री है श्रोता और वक्ता के बीच में, परीक्षित महाराज और शुद्ध गोस्वामी के बीच में। 7 दिन के लिए परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, बिना सोए बिना खाए बिना पिए, और जैसे जैसे वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी और उत्साहित होते जा रहे हैं। मैत्री मुनि से विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्री मुनि उनको धन्यवाद दे रहे हैं, आप मुझे क्या सुंदर प्रश्न पूछा, इससे मैं और गहराई में जा सकता हूँ कृष्ण कथा में। तो इस ढंग से हम अपने श्रवण को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि श्रवण ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है श्रवण और कीर्तन, अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग, हर समस्या का समाधान। जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो भक्ति सहस्रनाम महाराज बताते हैं कि जीवन के हर क्षण में हर घटना में हम भगवान की कृपा को देख पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं भगवान देखते हैं, हमारे लिए टेस्टिंग ग्राउंड है। इस जीव को साधना भक्ति में ले आए गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति कथा बीज ब्रह्मांड प्रमित कोनो भाग्यवान जीव, भगवान इस संचय देखते हैं असंख्य जीवात्माओं में से मैंने इसको चुना है और एक प्रमाणिक गुरु के शरण में लाकर इसके हृदय में भक्ति लता बीज डाल दिया है। अब मुझे देखना है भगवत हमारे भी योग्य बना है कि नहीं बना है, इसको टेस्ट करते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो तरह तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, कोई हमारा अपमान करेगा, कोई हमारा अपयश फैलाएगा। टेस्टिंग हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है, परीक्षा मुश्किल होती है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हंसते खेलते गाते हुए परीक्षा नहीं हो जाती है, एग्जामिनेशन के लिए बंदा तैयारी करता है, ऐसे लेके चले गए जैसे पार्टी में गए परीक्षा देने के लिए। पार्टी टाइम नहीं है, परीक्षा टाइम सीरियस है। लोग खाना पीना सोना टीवी देखना सब भूल जाते हैं और तैयारी करते हैं। इसी ढंग से जब हम श्रवण करेंगे तो हम तैयारी करते हैं, हरि कथा सुनकर हमारे हृदय में शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में जैसे मर्जी मुश्किलें भी आ रही हैं वो हमें एक परीक्षा लगेगी, हम देखेंगे इसके पीछे भगवान की कृपा है। और हम सही ढंग से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाएगा भक्ति में, डिप्रेशन और अपराध, और बोलेगा कि मैं बेचारा हूँ और बाकी सब मेरे को शोषण कर रहे हैं, मुझे ये सब काम क्यों करते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके मेरे ये प्रश्न उठेगा। इतने साल मैंने भक्ति की उसका ये परिणाम मुझे मिल रहा है। हमने देखा है भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या है श्रवण में कमी। इसलिए ये श्रवण ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, हमारा कीर्तन भी अच्छा होगा, श्रवण और कीर्तन के बाद स्मरण भी अच्छा होगा, फिर आगे पाद सेवना बताया जाएगा, अर्चना बताया जाएगा, दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर। अगर श्रवण ही डिफेक्टिव है तो बाकी सब सही ढंग से भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर विराम देंगे। ये एक्चुअली एक एक टॉपिक इतना विशाल है और इतना गहरा है, इसे खूब सी चर्चाएं कर सकते हैं, यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का भी प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। सबसे पहले
इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, बहुत गहरा प्रभु बहुत खुश कथा है। मुझे अक्सर ऐसे देखा जाता है कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं कि ये बट वी वॉन्ट टू हियर। और प्रवचन के दौरान भी जो है कई बार ऐसा ये मानसिकता रहती है, मिसाल के तौर पर जैसे आपने बताया कि प्रवचन में केवल बैठने से जो है काम नहीं चले, तो ये बहुत अच्छा बहाना बन जाता है उन लोगों के लिए जो प्रवचन में बैठते ही नहीं, जो वही वक्ता ही बता रहे हैं प्रवचन में बैठने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की कई गतिविधियाँ होती है जिसको फिर वो क्या होता है कि एज ए श्रोता भी और एज ए प्रवक्ता भी, मेरे पर्सनली अपना एक तजुर्बा है कि बोलने के बाद जो वी आर लेफ्ट डिफेंडिंग कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट वाज द इंटेंट। तो ये बीमारी का इलाज है, हाउ टू लाइक
बीमारी का इलाज है प्रश्न पूछना। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये समस्या है, अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न पूछे कि मैं कैसे जानूं कि बहुत साल पहले भी आप थे, सूर्य भगवान को आपने ज्ञान दिया कैसे समझो। अर्जुन ने ऐसे नहीं बोल दिया, हंसना शुरू कर दिया, बोला ऐसे बंडल मारे हैं ठीक है ठीक है बोलो बोलो, मैंने भी बस वहाँ ज्ञान दिया, यानी कि आदत है ऐसे ही बोलते रहने की। हम तो ये बोलेंगे ना, हमको ऐसी बात बोलेंगे तो सब हम जैसे चुपना भी टाइम पास करें, ठीक है रोजी ठीक है, हम बहुत अच्छा करेंगे वही जब चाहेंगे नहीं। अर्जुन बहुत सिंसियर था, उसने पूछा मैं कैसे इस बात को समझूं कि आप तो मेरे साथ के हैं, तो सूर्य के भगवान को विवस्व कैसे ज्ञान दिया आपने। परीक्षित महाराज सूर्य से पीछे एक मिनट अगर सूर्य के बाद कोई एक साल के बाद सूचना क्यों दी वही रोक देते, तो प्रश्न पूछ के हम क्लैरिफाई कर सकते। एक मिनट लिखो जी, आपने बोला कि क्लास में बैठने का फायदा है, तो क्लास में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पूछ लो तुरंत पूछ लेना चाहिए। ये रेसिप्रोकेशन, इसमें कोई वो नहीं है कि चुनौती नहीं दे रहे, आप पूछ रहे हैं क्लैरिफाई कर रहे हैं, बड़े प्रार्थना करते हुए पूछ सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि फिर भी आए फिर भी आए, जो पारिवारिक घर परिवार में रह रहे हैं कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर आए। आजकल इंटरनेट की सुविधा हो गई है, लेकिन ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि नेट में देख लेंगे। ये एक वातावरण होता है, एक वातावरण होता है, ये बहुत ही एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत इंटरनल एक्टिविटी है, पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, भक्तों का संग। इंटरनेट पर देख के भक्तों से मित्रता नहीं होगी, जो श्रवण का एक फल है कि भक्तों से मित्रता, एक साथ बैठ के तो शराबियों के विषय में तब होती है तो दोनों इकट्ठे पीट के करते चीयर्स करके पीटते, वो अपने घर में पी रहा है, वो अपने घर में बोल रहा है, फोन पे बात कर ली गालियां दे रही थी, तो हम भी बोलते हरी बोल करके हमें सुनते हैं, तो ये चीयर्स है हमारा, ये भी नशा है, ये नशा है। तो इकट्ठे बैठ के सुनना, हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर आना चाहिए भक्तों के बीच में, इकट्ठे सुनना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हम पालन क्यों नहीं कर पाते, कई बार ऐसे भक्तों से होता है प्रभु जी आज क्या था क्लास में, बड़ी अच्छी क्लास थी प्रभु जी, क्या बताया क्लास बड़ी अच्छी थी, कोई पॉइंट याद नहीं, तो डिस्कस नहीं करते। जब भी कोई क्लास सुने, सुन के आज जाए कि यार दो तीन पॉइंट कौन कौन से अच्छे थे, इसके ऊपर मैं मनन कर सकता हूँ, इसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ, इसकी ओर गहराई में जान सकता हूँ, इसको अपने जीवन में उतार सकता हूँ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जब इच्छा रखेंगे तब हम भगवत धाम आगे प्रगति करेंगे। शुरू शुरू में आए तो बड़े ईगर थे हम, हमें याद है बड़े ईगर थे, अभी जो शुरू के लेक्चर सुने हुए अभी तक एक एक वर्ड याद है उसका, एक एक उदाहरण याद है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया, जिसने हमें प्रेरित किया मदिरा पान छोड़ने के लिए, मांसाहार छोड़ने के लिए, चार नियम पालन करने के लिए, ऐसे कोई थोड़ी छोड़ सकता है। बहुत उत्कंठा से सुना था, हाँ जी आगे क्या बोल रहे हैं फिर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ सेटल हो गए, दीक्षा हो गई, सोलह माला हो गई, सब हो गए, अब तो वे सब मालूम है, मैं इनसे अच्छा बोल लेता हूँ, इनसे अच्छा उदाहरण तो मैं दे दूँ, प्रेजेंटेशन मेरे इनकी क्या मेरे क्या है, क्या श्लोक मेरे बोले नहीं प्रभु जी ने, वो श्लोक बोलना चाहिए, वो चारों देखो श्लोकों को कैसे है, साफ मान लेते पंजाबी है। तो ऐसे ऐसे हमारे मन विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है, ईगरनेस खत्म हो गई, ईगरनेस खत्म हो गई। लेकिन शुरू में ऐसे नहीं थे, शुरू में वो क्लीन स्लेट, एक ही बात सुनते थे ध्यान से। अभी भी हमारे हृदय में अनर्थ है और अनर्थों को दूर करने के लिए सुनना है, सुनना बंद अनर्थ आगे बढ़ेंगे, फॉल डाउन तभी तो बोलते हैं कि भक्ति में आना आसान है, भक्ति में लंबा लगातार चलना बहुत कठिन है। क्यों? अपने आप को हम इस मार्ग का समझते हैं, श्रवण बंद करते हैं। सबसे पहले श्रवण बंद होता है, दिखने में लगता हम है लेकिन वो उत्कंठा, वो हृदय से शरणागत होकर सुनना, अपने आप को कुछ ना समझना और जो बोल रहे उसकी बात को महत्व देना, ये एसोसिएशन बंद हो जाता है। श्रवण बंद, संग बंद, फिर किसका संग करेंगे? असंग संग, भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी, अनर्थ बढ़ेंगी, फिर उसको छुपाने के लिए व्यक्ति राजनीति करता है, कूटनीति करता है, दोगलापन करता है, कोई बड़ा हूं मैं तो सीनियर हूं, मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन श्रवण बंद है, अपडेट आप हुए नहीं। सॉफ्टवेयर की फील्ड में अगर आप तक अपडेट नहीं करेंगे, यू आर आउट, ले ऑफ कर देते हैं। भैया किस किस जमाने की बात कर रहे हो? 486 में पढ़े हो, आखिर कौन सा आ गया? माइक्रो प्रोसेसर, पता नहीं कोई भी आ गया। आई एम आउटडेटेड। सॉफ्टवेयर की फील्ड में आप आउटडेटेड है, कंप्यूटर लैंग्वेज लड़कों को अपडेट नहीं किया, आउट, नौकरी नहीं मिलेगी। तो भक्ति की फील्ड में सोचे पहले एक बार आगे 16 वाला हो गए, 4 नियम हो गए, मैं सेटल नहीं, आउटडेटेड, आउट, आउटडेटेड है। डेली शॉर्ट और डेली इंप्रूवमेंट के लिए सोचना क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही दुख के साथ बोल रहे हैं, हमारा अपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हियरिंग बंद हो चुकी है कई सालों से, कई सालों से हियरिंग बंद है बिल्कुल। काम चलाने के लिए, लेक्चर देने के लिए पढ़ते, हियरिंग बंद, रीडिंग बंद, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले थी। तो बड़ी दुर्दशा है, सब कुछ प्रमाणिक होते हुए भी हम रुक गए हैं, हम स्टॉप, और भक्ति रुक नहीं सकती, या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे, माया पीछे धकेल देगी या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माया के प्रति युद्ध है। ऐसा तो नहीं भारत पाकिस्तान के में सब खड़े हुए चुपचाप ऐसे बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, ऐसे सैनिक खड़े थोड़ी रहेंगे, या तो आगे जाए या पीछे को हटा दिया जाएगा, तब चुपचाप खड़े हैं, ऐसे तो होने सकते। इसलिए श्रवण हम बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हम श्रवण करते रहे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, कीर्तन हमारा इम्प्रूव होगा, स्मरण होगा, सब कुछ आगे ठीक होगा। तो बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राम की जय, नंद कोटि कृष्ण की जय, बहुत बहुत धन्यवाद।